हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 73। कृपया इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। शब्दों का अर्थ देखिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, नष्ट दूर हो गया मोह, मोह स्मृति स्मरण शक्ति लब्धा पुनः प्राप्त हो गई, त्वत् प्रसादात आपकी कृपा से माया मेरे द्वारा अच्युत हे अच्युत कृष्ण स्थितोस्मि स्थित मतलब हो गया हूँ, गत यानी दूर हो गए हैं संदेह जो सारे संशय थे वो, करिष्ये पूरा करूंगा वचनम आदेश को तव तुम्हारे। अनुवाद, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण हे अच्युत अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है, अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कार्य करने के लिए उद्यत हूँ। इन पवित्र शब्दों को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाश्च श्रीरूपं साकृजातं సహక రఘునాథ వితం తం సజీవం సాత్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధ కృష్ణ పాదాం సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాశ్చ హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపేశ గోపీకాంత శ్రీరాధాకాంత నమోస్తుతే తప్త కాంచనం గౌరంగి శ్రీరాధే వృందావనేశ్వరి వృషభాను సూతదేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే వంశకల్పతరు భయశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితనాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైతం గదాధారం శివాసది సౌరభక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. గ్రంథా శ్రీమద్భగవద్గీతా మాత కీ జయ హో. భగవాన్ శ్రీకృష్ణ నే శ్లోక నంబర్ 72 మే అర్జున్ సే ఏక్ ప్రశ్న కియా. భగవాన్ నే కహా, కచ్చిదేతశ్రుతం పాఠ త్వయైకాగ్రేణ చేతసా కచ్చిదజ్ఞాన సమ్మోహ ప్రణష్టస్తి ధనంజయ. హే ధనంజయ, క్యా తుమ్ ఇస్సే యానీ ఇస్ శాస్త్ర కో అభి జో మేనే జ్ఞాన సునాయా థా, ఏకాగ్రచిత్త హోకర్ తుమ్నే ఇస్కో సునా హై, ఔర్ క్యా అబ్ తుమ్హారా అజ్ఞాన్ ఔర్ మోహ్ నష్ట హో గయా హై? భగవాన్ శ్రీ కృష్ణ సే అర్జున్ నే పూచ్ ఏక్ బార్ కహా థా జబ్ దూసరా అధ్యాయ చల్ రహా థా. చాప్టర్ 2 టెక్స్ట్ నంబర్ 7 మే భగవాన్ శ్రీ కృష్ణ కో అర్జున్ నే ఏక్ కహా థా, కార్పణ్య దోషో పహత స్వభావ పృచ్ఛామి త్వం ధర్మ సమ్మూఢ చేత యత్ శ్రేయస్యానే చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తిహం శాధిమం త్వం ప్రపన్నం. अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ. ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए जो शिष्यकर है और उसे निश्चित रूप से कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ. भगवान ने कहा ये मोह मेरे ऊपर, सॉरी अर्जुन ने कहा मेरे ऊपर इतनी कायरता छा गई है और मैं अपना सब कुछ भूल गया हूँ और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए. तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारे इसी मोह को नष्ट करने के लिए मैंने पूरा उपदेश तुम्हें दिया है, अज्ञानता का नाश करने के लिए तुम्हें पूरा उपदेश दिया. क्या तुमने इसको गौर से सुना? और अगर गौर से सुना है तो इसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए कि तुम्हारा मोह और अज्ञानता दूर हो जानी चाहिए. तो क्या हो गए दूर? तो फिर इस बात का यहाँ पर अर्जुन आज भगवान को उत्तर दे रहे हैं. अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह सिमृतिर्लब्धा तत्र साधान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव. हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति मुझे वापस मिल गई है. अब मैं संशय रहित हूँ और दृढ़ हूँ, आपके आदेशानुसार काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ. भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि मैंने बहुत ही गौर से सुना है और मेरा सारा मोह नष्ट हो गया. अब मोह नष्ट होने के बाद क्या होना चाहिए? बस जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की बात समझ में आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस समझ में आ गई थी, सुनो इनफ. भगवान को अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनं तव, अब मैं वही करूंगा
जो कि आप कहोगे। ये होता है मोह का नष्ट होना, ये होता है देहात्म बुद्धि से बाहर आने का लक्षण। ये नहीं कि हाँ बस हमें पता चल जाए कि ये सही है ये गलत है, ये सत्वगुणी है ये रजोगुणी है ये तमोगुणी है। हमें क्या करना है, वो तो हम जो वही चल रहा है, जो पिछली हमारा सर्कल चल रहा है उसी पे चल रहे हैं, और पता चल गया बस ये सही है ये खाना चाहिए, ये तमोगुणी है ये नहीं खाना चाहिए, ये सत्वगुणी है ये खाना चाहिए, ये शुद्ध सात्विक है अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पण करना चाहिए। पता चल जाने का मतलब ये है कि आपको फॉलो करना है। ज्ञान का मतलब क्या है, संयते इंद्रिया, ज्ञान भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला काम क्या करना है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं कि ज्ञान हासिल हो गया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बाद भी अपनी मनमानी करते रहो, वही कुत्तों बिल्लियों जैसी जिंदगी गुजारते रहो। अर्जुन कह रहा नहीं, अभी मुझे पता चल गया है ना कि क्या सही है क्या गलत है, अभी मैं वही करूंगा जो आप चाहते हो। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेश अनुसार कर्म करे, वह आत्मानुशासन यानी संयम करने के लिए बना है। आज श्रील प्रभुपाद जी जीव के विषय में बता रहे हैं जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, अर्जुन। हम सब आत्मा हैं और भगवान का आदेश के अनुसार जीव को किस तरह से कार्य करना है, जीव का क्या उसकी वैल्यू क्या है उसका स्वरूप क्या है, वो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीव का स्वरूप है परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। जब वो अज्ञानता में होता है तब वो ये सोचता है कि मैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करूं, लेकिन वास्तविक उसकी स्थिति क्या है कि वो अपने भगवान के आदेशानुसार कार्य करें। वह आत्मानुशासन के लिए बनाए यानी कि इसलिए नहीं बनाए कि जो दिल करे वो काम करे, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता नहीं, संयम के लिए बनाए। कुछ लोग बोलते ना इसे कि आप लोग की लाइफ कैसी है, हर चीज में कंट्रोल, हर चीज में संयम, हर चीज में संयम, ऐसे क्यों, मजा नहीं है लाइफ में। लेकिन वास्तव में शास्त्र कहता है कि जीव जो है वो आत्मानुशासन यानी संयम के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर का नित्य दास की सूरत में है। क्या स्वरूप है जीव का, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति वेदा भेद प्रकाश, के जीव का स्वरूप क्या है, नित्य कृष्ण दास। और दास का क्या कार्य है, अपने स्वामी की आज्ञाओं का पालन करना, ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना। और अगर जो ये सोचते हैं कि आप संयम कर रहे हो, खाली आप कंट्रोल ये करो ऐसे करते रहते हो, तो उसके साथ कंपैरिजन के करके बताते हैं श्रीला प्रभुपाद जी, इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बदल जाता है। यानी कि जब जीव इस नियम को भूल जाता है, किस नियम को, कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, ये नियम भूल जाता है तो उसकी मुक्ति नहीं होती है, फिर तो और भी वो प्रकृति द्वारा बदल हो जाता है, फिर तो प्रकृति उसे जन्म मरण के चक्कर में फांस देती है। बारंबार दुख दोषानुदर्शनम, बारंबार दुख होंगे, बारंबार दोष करेगा, अपराध करेगा और कभी भी मुक्ति तक नहीं पहुंचेगा, या जब तक वो इस बात को याद नहीं कर लेता है, इस बात की स्मरण शक्ति उसे वापस नहीं आ जाती है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ और मेरे जीवन का कर्तव्य केवल भगवान के आदेशों का पालन करना। जब तक ये याद नहीं आता तब तक क्या है, प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है। लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बन जाता है। कितना इतना अच्छे तरीके से, इतना बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर। लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बन जाता है, यानी अपनी सेवा करेगा तो बद्ध हो जाएगा, इंद्रिय तृप्ति करेगा, अपने शरीर की सेवा करेगा तो क्या होगा, वो बद्ध अवस्था में आ जाएगा। लेकिन भगवान की सेवा करने से वो मुक्त दास बनेगा, दास होगा लेकिन मुक्त। ये भगवान की माया है। जब जीव इस संसार में आ जाता है तो अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, फिर वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और इस तरह से प्रकृति का दास बन जाता है। वो अपने आप को प्रकृति द्वारा वो बधा हुआ होता है, प्रकृति के चुंगल में होता है और ऐसा लगता है उसको जैसे मैं मुक्त हूँ, लेकिन वास्तव में वो प्रकृति का दास होता है। लेकिन जब वो अपनी स्मरण शक्ति याद कर लेता है और भगवान के दासत्व में आ जाता है, फिर वो माया से मुक्त हो जाता है। अब प्रकृति का बद्ध, यहाँ पर भगवान श्री प्रभुपाद ने क्या बताया कि अगर वो इस नियम को भूल जाता है तो प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, यानी फिर प्रकृति का बद्ध दास बनने से बेहतर है भगवान का दास बन के भगवान का मुक्त दास बना जाए, क्योंकि प्रकृति के चुंगल से तो निकला ही नहीं जा सकेगा जब तक कि हम भगवान के दास नहीं बन जाते हैं। तो जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं सेवा करना अनिवार्य है, उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। सेवा करने से वो छूट नहीं सकता है। जीव चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी शरीर में हो, उसे सेवा करनी है। अपने बच्चों की सेवा करनी है, अपने परिवार की सेवा करनी है, अपने देश की सेवा करनी है, अपनी कंट्री की सेवा करनी है, किसी की सेवा करनी है। अगर किसी और की नहीं करता तो अपने शरीर की सेवा करनी है, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करना है। तो सेवा करना उसका स्वभाव है, सेवा से नहीं हटा जा सकता। अब सेवा के लिए भी सिर्फ आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो माया का गुलाम बनो या भगवान का सेवक बनो। अगर आप भगवान का सेवक बनते हो तो मुक्त दास, क्योंकि ये आपकी रियल स्थिति है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूप व्यवस्थिता, अपनी असली स्वरूप में आकर आप सेवा करते हो तो ये आपकी मुक्त अवस्था है। लेकिन वो बद्ध अवस्था है जब आप माया की सेवा करते हो, भगवान की सेवा नहीं करते हो, माया की सेवा करते हो। तो माया कभी कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके गिराए। माया तो आपको इतना मतलब अपने जीवन में कभी ऊपर ले जाएगी, कभी नीचे ले जाएगी, कभी सेंटर में रखेगी। बारंबार जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख आदि, दैविक आदि, भौतिक आध्यात्मिक, इन दुखों, माया का मतलब होता है केवल दुख प्रदान करना आपको, क्योंकि आपको वो पनिशमेंट है ना। आपने अपने असली स्वरूप को छोड़कर आप भौतिक ये जो प्रकृति है उसके चुंगल में आ गए तो प्रकृति आपको पनिशमेंट देती है, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालती है, जब तक कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं खोज लेते हो, नहीं स्मरण कर लेते हो कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वो अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति यानी माया की सेवा करना पसंद करता है तो वो निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। कितना अच्छा श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यदि आप भगवान की सेवा करोगे तो क्या होगा, भगवान की सेवा करने से हमें हमारी सामान्य स्थिति प्राप्त होगी, यानी मुक्त सामान्य स्थिति, रियल स्थिति मतलब मुक्ति अवस्था में। लेकिन यदि बाह्य शक्ति यानी माया की सेवा करना पसंद करेगा तो वो निश्चित रूप से बंधन में बनेगा। अब चॉइस हमारे हाथ में है। भगवान ने ये नहीं कहा कि हरुभरु आप मेरी सेवा करो। भगवान ने कहा है कि यत इच्छसि तथा करो। अगर माया की सेवा करोगे तो नित्य बद्ध रहोगे, और अगर भगवान की सेवा में आ जाओगे तो मुक्त दास बनोगे। तो इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है। सबके अंदर हमारा मोह है, हमें पता नहीं है कि हम क्या है, हमारा स्वरूप क्या है। हम समझते हैं जो अभी हम हैं वही हमारा स्वरूप है और इसी हिसाब से सेवा करते हैं। वह काम तथा इच्छाओं में बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है, यही मोह कहलाता है। जीव इच्छाओं के अनुसार कार्य कर रहा है, अपनी इच्छाओं को पूरी करते हुए मतलब जब से जन्म लिया है तब से केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए माया की सेवा कर रहा है। ये प्रकृति माया है, ये शरीर माया है, ये सारे संबंध भी माया है, उनके अनुसार वो कार्य कर रहा है और अपने आप को स्वामी मानता है, ये मोह है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरणागत हो जाता है। ये मुक्ति है। कि आपका मोह खत्म हो गया कि मुझे अपने को या अपनों को खुश करना है। वास्तविक मुक्ति क्या है? जब जीव को यही पता चल जाए कि मुझे भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना है और परमेश्वर की शरण ग्रहण करनी है। जीव को फांसने का माया का अंतिम पाशय है यह धारणा है कि वह ईश्वर है। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि माया का अंतिम पाश क्या है, कि जीव को ये बताना कि आप में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। आत्मा सुपरमात्मा ये अंतिम पाश है, हाईएस्ट डिग्री की माया ये है कि कोई जीव ये सोचे कि मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अंत तो गत्वा हम दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। जीव सोचता है कि अब वह भद जीव नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों होता। यानी कि बेवकूफ ये इतनी कि जीव सोच रहा है कि मैं ईश्वर हूँ। मूर्खता की इंतहा है जब कोई जीव ये सोचता है कि ईश्वर में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ। ईश्वर कभी नहीं होता है, जीव नित्य दास है। यहाँ पर हमें भगवान यही बता रहे हैं। भगवान ने कहा अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मैं आपका दास हूँ। जीव की रियल स्टेज ये है, स्थिति ये है कि वो भगवान का दास है, इसीलिए भगवान के आदेश अनुसार उसको कार्य करना चाहिए। लेकिन यदि कोई जीव ये सोच रहा है कि अब मैं ईश्वर हूँ तो ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। वह इस पर विचार नहीं कर सकता अब कि वो अगर वो भगवान होता तो वे इतने संशय क्यों होते, अगर भगवान होता तो ये सब अपराध क्यों हो रहे हैं, अगर भगवान होता तो वो गिरा कैसे। इसलिए वो ये समझ नहीं सकता, इस पर विचार नहीं कर सकता, इसलिए यही माया का अंतिम पाश है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। माया से मुक्ति का मतलब क्या है? यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि माया से मुक्ति होने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण को समझना कि वो स्वामी हैं और मैं सेवक हूँ, तो उनके आदेश अनुसार मुझे कार्य करना है। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जो सेकंड वर्ड है ना, नष्टो मोह, ऐसा मोह है तो शिवपा जी कहते हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है, लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में ना समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से जीता जा सकता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये मोह है कि जीव अपने आप को भोक्ता समझता है। वास्तविक भोक्ता क्या है? भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही समस्त लोगों का महेश्वर हूँ, मैं ही समस्त यज्ञ तपस्याओं का भोगने वाला हूँ। लेकिन जीव जब मोहग्रस्त हो जाता है तब वो ये सोचता है कि मैं भोक्ता हूँ, लेकिन उसका ये मोह दूर हो सकता है यदि भगवान की कृपा हो या शुद्ध भक्त की कृपा से इस मोह को जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। जब ये मोह टूट जाता है कि मैं ईश्वर हूँ, जब उसे ये पता चल जाता है कि मैं तो भगवान का नित्य दास हूँ, फिर वो क्या कार्य करेगा? फिर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को ज्वाइन करेगा, कृष्ण भावनामृत में कार्य करेगा। और कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का क्या मतलब है? यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। बस ये है कृष्ण भावना। कोई बोले ना कि कृष्ण भावनामृत का क्या मतलब है, तो श्री प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया कि कृष्ण के आदेश अनुसार कार्य करना, जैसा कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, एज इट इज हमें कार्य करना है, अपनी इच्छा नहीं। भगवान ने भले हमारे ऊपर छोड़ दिया कि या तो इच्छे से तथा करो, लेकिन भगवान की इच्छा क्या है? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो, तो मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरी शरण में आओ, मेरी मुझे नमस्कार करो। ये भगवान की इच्छा है। अब भगवान की आदेश है हमारे लिए कि ऐसा करो, तो उसी आदेश के अनुसार कार्य करना ही कृष्ण भावनामृत है। भद्र जी माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी है। यहाँ पर, जब तक वो बद्ध होगा तब तक ये उसे समझ में नहीं आएगा कि भगवान स्वामी है। जो ज्ञानमय है और मोह जब खत्म हो जाता है फिर हमें पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है? यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उसके विषय में बताते हैं कि जब मोह नष्ट होता है तो क्या पता चलता है कि भगवान ज्ञानमय है और सर्व संपत्तिवान है। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं, वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अध्यक्ष हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रित हैं और समस्त ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण हैं। ये भगवान की स्थिति है जो हमें जब तक समझ में नहीं आती है, जब तक हम मोह में होते हैं। जब मोह में नष्ट हो जाता है तब हमें पता चलता है भगवान ज्ञानमय है, भगवान को सब कुछ पता है और सर्व संपत्तिवान है। संसार की समस्त संपत्तियों का अधिकार केवल कृष्ण को है। वो सब कुछ जानते हैं और हर एक चीज पर अधिकार रखते हैं। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं, वो समर्थ हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों के योगक्षेम का स्वयं वहन करते हैं। वे सबके मित्र हैं, ये तो भगवान ने कह दिया, समोहम सर्वभूतेषु। लेकिन आगे भगवान ने कहा, मई ते तेषु चाप्यहम, भक्तों पर विशेष कृपालु हैं। इसलिए अगर भगवान की कृपा का पात्र बनना है तो सबसे पहले भक्ति करनी है, और भक्ति में सर्वश्रेष्ठ श्रवणम कीर्तनम और उसके बाद प्रचारम। भगवान ने कहा ना, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा वो लगता है जो मेरे इस दिव्य ज्ञान को मेरे भक्तों को समझाता है। तो सिंसियरली ये करना है। और यदि हमें भगवान की विशेष कृपा का पात्र बनना है, वे प्रकृति तथा समस्त जीवों से के अध्यक्ष हैं। यहाँ संसार की जो प्रकृति है, जो माया है, वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान के इशारों पर माया चलती है और वे अक्षय काल के नियंत्रक है, यानी कि जो काल है, जो समय है, जो कि कभी समाप्त नहीं होता, अक्षय है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में, कालोऽस्मि लोक अक्षय कृतम, जो ये काल है ना, जो समस्त लोकों का नाश करता है, वो स्वयं मैं हूँ। और काल जो है वो भगवान के इशारों पर कार्य करता है। ये सूर्य चंद्रमा सब भगवान के इशारों पर आते हैं और अपने अपने ऑर्बिट्स में सर्कल लगाते हैं। ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा होता है और समस्त ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण है भगवान। ये जब मोह नष्ट हो जाता है तो हमें पता चलता है। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं, ये भगवान की इच्छा है। भगवान अपने भक्त से कितना प्यार करते हैं कि आत्मसमर्पण कर देते हैं। हाँ बाबा, जैसे चाहो मुझे चलाओ, कभी सारथी बना दो मुझे, तो कभी ग्वाला बना दो, अपनी गायों को मेरे हाथों से चरवाओ, जो कार्य बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि भगवान जो है उनको अच्छा लगता है अपने भक्तों की सेवा करना, इसलिए वो आत्मसमर्पण कर सकते हैं। जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है, वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। भगवान को जानना, भगवान के विषय में समझना तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यही इस जीव का एकमात्र का लक्ष्य है। कि जब जीव भगवान को जान लेता है तभी वो अपनी वास्तविक स्थिति यानी अपने रियल स्वरूप को पहुंच सकता है। लेकिन जब तक नहीं समझता है तब तक वो मोह के वश में होता है और वो कभी भी इस मोह पाश से तब तक नहीं निकल सकता जब तक भगवान को ना जान ले। लेकिन अर्जुन भगवान से श्रीमद् भगवद गीता सुनकर मोह से मुक्त हो गया है। अब यहाँ पर अर्जुन ने कह दिया, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मया अच्युत। हे अच्युत, मेरा ये मोह खत्म हो गया है कि मैं कुछ करने के योग्य हूँ। मैं तो केवल आपका क्या करूंगा, करिष्ये वचनम तव, जो आप कहोगे वही मैं करूंगा, क्योंकि मैं तो आपका नित्य दास हूँ। वह यह समझ गया है कि कृष्ण केवल उसके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान है और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया है। क्या समझ गया? भगवान है वो, और जो वो कहेंगे उसी भगवान के आदेशों का पालन करना मुझ दास का कर्तव्य है। ये तो अर्जुन ने बहुत पहले समझ लिया था, जब 10.20 में कहा था, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवम् पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। ये तो उसको बहुत पहले समझ में आ गया जब उसने विश्वरूप देखा भगवान का, लेकिन अपनी स्थिति अब समझ में आई कि मुझे क्या करना है। आखिर तक पूछ रहा था कि कुछ ऐसा हो कि मैं त्याग कर लूं और युद्ध से बच जाऊं, लेकिन आज अर्जुन को ये पता चल गया कि बचना वचना कुछ नहीं है, मुझे केवल भगवान के आदेशों अनुसार कार्य करना है, बाकी मेरे जीवन की डोर मेरे कृष्ण के हाथ में है, जैसे चाहे मुझे चलाए, मुझे तो सिर्फ उस ओर जाना है जिस ओर वो मुझे लेकर जाना चाहता है, जो कार्य मुझसे करवाना चाहता है वो मुझे करना है। मेरी वास्तविक स्थिति भगवान के दासत्व की है, और जब ये पता चल जाता है ना तब रियल मोह तभी खत्म हो जाता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वह यह समझ गया था कि कृष्ण केवल उसके मित्र नहीं है बल्कि भगवान है, वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया था। अतएव भगवद गीता का पाठ करने का अर्थ कृष्ण को वास्तविक में समझ वास्तविकता के साथ समझना है, ये है गीता का अर्थ। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी गीता सार बता रहे हैं कि यदि कोई समझता है कि मुझे गीता समझ में आ गई तो वास्तविक ये कि भगवान कृष्ण है और मैं उसका दास हूँ, जैसा अर्जुन ने कहा कि अब मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आप भगवान हो और मैं आपका दास हूँ। ये है गीता का सार। ये नहीं है जो अच्छा हो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा, जो होने वाला है वो भी अच्छा है, जो पहले हुआ था वो भी अच्छा है, और कल भुला दो भेद कल का, आज क्यों तुम डोर। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब मनुष्य की मनगढ़ंत बातें हैं, वास्तविक में गीता सार क्या है कि आप भगवान को समझो कि कृष्ण भगवान है और आप अपने आप को समझो कि मैं कृष्ण का दास हूँ। ये है भगवद गीता का वास्तविक गीता सार। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण कर देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि भगवान है और मैं दास हूँ, तो फिर क्या करता है, शरणागत भगवान का हो जाता है, आत्मसमर्पण कर जाता है। जब अर्जुन समझ गया कि यह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, भगवान जो है वो संसार में पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं, और क्योंकि भगवान कहते हैं जब जब अधर्म बढ़ता है तो मैं आता हूँ अधर्म दुष्टों का विनाश करने के लिए, तो भगवान की योजना थी, भगवान अपनी योजना के तहत ये युद्ध करना चाहते थे और इसी तरीके से करना चाहते थे अर्जुन के जरिए से या पांडवों के जरिए से, ताकि भगवान ये दिखाना चाहते थे कि धर्म की विजय होना अनिवार्य है क्योंकि मैं धर्म के साथ होता हूँ। तो भगवान जो है वो खुद इसलिए नहीं लड़े क्योंकि भगवान चाहते हैं कि संसार को ये पता चले कि मैं भले अगर निहत्ता भी होऊंगा धर्म का साथ दूंगा और जहाँ पर मैं होऊंगा वहां पर विजयी होना आवश्यक है। तो संसार जो है वो धर्म के और धर्म की राह पर चलने के लिए उद्यत होगा, और अधर्म चाहे कितना भी ज्यादा बढ़ जाए लेकिन चाहे कुछ दिन वो भले भलता फूलता लेकिन अंत में विजयी धर्म की ही होती है, अधर्म का सर्वनाश हो जाता है क्योंकि धर्म के साथ कृष्ण होता है। तो ये तो कृष्ण की योजना थी कि वो इस तरह से पृथ्वी का भार कम करना चाहते थे, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया, उसने पुनः भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। यहाँ पर होता है अर्जुन के मोह नष्ट होने का प्रदर्शन कि उसने जो धनुष रख दिया था और कहा था नयोत्स्यमिति गोविंदम, मैं लड़ाई नहीं करूंगा गोविंद, और आज कह रहे हैं करिष्ये वचनम तव, मैं आपके आदेशानुसार कार्य करूंगा। तो भगवान कृष्ण इतने चतुर हैं, इतने वाक्पटु हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतना उनके पास ज्ञान है कि वो अपनी बात किसी भी तरीके से किसी भी स्थिति में चाहे जीव हो उससे मनवा सकते हैं, बस जीव को खाली उनकी शरण में जाना। याद है भगवान श्री कृष्ण हंसे थे 2.10 में संजय ने बताया था तमोवाच ऋषिकेश रहस्यमिव भारत कि सेनयोर गयोर मध्य विचिरंतम इदमस्ति कि हंसते हंसते भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा था जो अभी भगवद गीता भगवान ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को बताई। और इससे क्या हुआ, भगवान हंस रहे थे कि अभी तुम भले कितना ही मोह में क्यों ना हो, लेकिन जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो तुम्हारा सारा मोह नष्ट हो ही जाएगा। और यहाँ पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कहा है। अच्युत वो व्यक्ति जिसकी महिमा कभी भी कम ना हो, वो भगवान जो कभी भी चूक नहीं करते, कभी भी किसी चीज में वो पीछे नहीं हट सकते, कभी भी उसकी महिमा का क्षय नहीं होता, वो व्यक्ति जिसके भक्त कभी च्युत नहीं होते, वो भगवान जिसकी महिमा कभी भी खत्म नहीं होती है, वो सनातन भगवान, उनको अच्युत कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन अच्युत कहते हैं। हालांकि देखो भगवान श्री कृष्ण अनेक अवतार लेते हैं, कभी पशु बनते हैं, कभी पक्षी, कभी सुअर बनते, कभी मत्स्य, कभी वामन बनते, लेकिन उनकी महिमा कभी खत्म नहीं होती। कभी वो सारथी बन जाते हैं, कभी रन छोड़ जाते हैं, कभी चोरी करते हैं, लेकिन उनका यश कभी च्युत नहीं होता। वो भगवान हैं, भगवान थे और भगवान रहेंगे। भगवान कृष्ण वास्तविक में भगवान है और उसमें कभी भी उनके भगवानता में कोई भी कार्य कर ले उसमें कोई कमी नहीं आती है। तो अर्जुन भगवान को बता रहे हैं कि क्योंकि आप अच्युत हो, आप में कभी कोई कमी नहीं आती, आपकी महिमा कभी खत्म नहीं होती और आप जो चाहते हो वो करवा ही करवा के रहते हो, और जो आपकी शरण में आ जाता है। अब यहाँ पर अर्जुन ने क्या कहा, करिष्ये वचनम तव, जो आपकी शरण में आ जाता है उसका भी वास्तविक, जो उसकी वास्तविक स्थिति है वो उसे प्राप्त हो जाती है और उसके समस्त बंधन खत्म हो जाते हैं। वो अपनी मुक्त अवस्था में मुक्त दास बन जाता है, क्योंकि उसका रियल स्वरूप है जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। जो आपकी शरण में आ जाता है उसके समस्त कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने अपने रथ की डोर, अपना सारथी बनाया, तो फिर भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई अर्जुन को हर एक संकट से बचाने के लिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण हर एक आपत्ति से एक कवच की तरह अर्जुन की रक्षा कर रहे थे। बहुत दफा ऐसा हुआ, हालांकि भगवान ने कोई भी शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन जितने भी वीर थे वो भगवान के सलाह के, भगवान के आदेशों अनुसार ही सबका नाश हुआ। जब भी अर्जुन की ओर कोई तीर आता था तो भगवान इस तेजी से, इस चतुराई से रथ को घुमाते थे कि अर्जुन को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचती थी। कर्ण के पास एक बहुत ही खतरनाक बाण था जो अर्जुन पर उसने चलाया था, तो जब चलाया अर्जुन की ओर तो सब देवता देख के हैरान हो गए, क्योंकि ये एक सांप था। सांप अर्जुन बहुत ही खतरनाक सांप के जैसा बाण था। जब कर्ण ने चलाया तो बिल्कुल जिसको लग जाता वो उसका मरना निश्चित था। सारे देवता जो है वो आसमान में खड़े होकर उस बात को देख रहे थे, लेकिन अब जाने का कोई रास्ता नहीं था, बाण छूट चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उस रथ को अपने पांव से बहुत जोर से दबाया और रथ के पहिए जमीन के अंदर चले गए। घोड़े जो थे वो अपने घुटनों के बल बैठ गए और वो जो बाण था वो अर्जुन को ना लगकर अर्जुन के मुकुट को लग गया, और मुकुट जो है वो उसी समय ऐसे जल गया। तो जो हीरे मोती का जो मुकुट था वो जल गया उस बाण से। अगर अर्जुन के सर पे लगता था तो कितना उसका नाश होना संभव था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जिसके साथ होते हैं उसका नाश होना कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान हर ओर से उसकी रक्षा करते हैं। भगवान अच्युत सारथी हैं। तो जो भगवान की शरण ले लेता है उसका समस्त मोह नष्ट हो जाता है और वो अपनी वास्तविक स्थिति यानी मुख्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम भगवान को अपना ईश्वर माने और हम सब भगवान के नित्य दास हैं और भगवान ने जो हमें आदेश किया है उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। यही गीता का सार है और यही आज हमें अर्जुन बता रहे हैं कि मैं यही करूंगा जो कि मुझे कृष्ण ने कहा है। तो यहाँ पर हमारी श्रीमद् भगवद गीता जो है वो समाप्त हुई। अब संजय हमें बताएंगे कि इस गीता के विषय में बताएंगे कि क्या क्या याद आ रहा है, कैसा लग रहा है और इसका श्रुति फल क्या है।